ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. நமோம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஸ்சாத்ய தேச தாரிணே. டு இன்டர்நேஷனல் சொசைட்டி ஃபார் கிருஷ்ண கான்ஷியஸ்னஸ் அந்தராஷ்டிரிய கிருஷ்ண பாவனா அமிர்த சங்க் கி ஓர் சே ஆப் சப்கா ஸ்வாகத் கர்தே ஹை ஔர் தன்யவாத் கர்தே ஹை. இஸ் பவ்ய பஹுத் சுந்தர் சிவாலய கே நிர்மாண கர்னே வாலே ஆப்கே ஔர் ஹமாரே பூர்வஜோ கா ஜினோனே அப்னி சன்ஸ்கிருதி கி சுரக்ஷா கே லியே ஐசே மஹத்வபூர்ண கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி ராமநாமி நரசிங்க சதுர்தசி ஆதி மஹத் உத்சவ மனானே கே லியே இத்தனா பவ்ய பவன் பனாயா ஹை. வெரி சிவாலய சப்த கா அர்த்த ஹை சிவ கேத்தே ஆஸ்பிஷியஸ்னஸ் கோ சுப் மங்கள். தோ சிவாலய கா அர்த்த ஹோதா ஹை ஜஹா மங்கள் ஹோ ஜஹா சுப் ஹோ ஜஹா எவ்ரி திங் இஸ் ஆஸ்பிஷியஸ். சிவ மத்தலப் மங்கள் ஆஸ்பிஷியஸ். ஜெய வைகுண்ட கா அர்த்த ஹோதா ஹை ஜஹா கோய் குண்ட நா ஹோ ஜஹா கோய் ஆங்ஸைட்டி நா ஹோ ஜஹா கோய் பரேஷானி நா ஹோ ஜஹா துக் நா ஹோ உஸ்கோ வைகுண்ட போல்தே ஹை. ஔர் சிவாலய கா மத்தலப் ஜஹா சப் குச் சுப் ஹோ. தோ சுப் க்யா ஹை? புண்ணிய சுப் கிஸ்கோ கேத்தே ஹை? தோ ஸ்ரீமத் பாகவத் மே லிக்கா ஹை, ஸ்ருணவதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண புண்ணிய ஶரவண கீர்த்தனஹ ஹ்ருதய அந்தஹ ஸ்தானி அபத்ராணி துனோதி ஸ்வஹ்ருத ஸதாம். ஸ்ருணவதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ண புண்ணிய ஶரவண கீர்த்தன. ஜிந்தகி மே புண்ணிய க்யா ஹை? புண்ணிய கா அர்த்த க்யா ஹை? சுப் மங்கள்காரி. உஸ் ஜிந்தகி மே புண்ணிய க்யா ஹை? போலா சுப் ஸ்தான் கே ஊபர் பேட்டே சிவாலய மே பேட்கர் கதா சுனி சாயே. கோன்சி கதா சுனி சாயே? வியாசதேவ் போல் ரே ஹை ஜோ பகவான் கே அவதார் ஹை. ஔர் வோ கல்யுக் சே பஹலே கல்யுக் கே லோகோ கே மார்க்தர்ஷன் கே லியே ஏக் வேத கோ சார் வேதோ மே விபாஜித் கியா. உன்னே தேகா ஃபிர் பி யே வேத சம்ஜேகா கோய் நஹி. தோ வேதோ கோ சம்ஜானே கே லியே 108 சே அதிக உபநிஷத் லிகே. ஃபிர் தேகா யே பி கல்யுக் கே லோகோ கோ படனே கா சமய நஹி மிலேகா. 108 உபநிஷத் கே நாம் பி நஹி ஆயேங்கே. உபநிஷத் கே அந்தர் க்யா லிகா ஹை வோ கோன் படேகா? தப் உன்னே தேகா கே கல்யுக் கே லோக் விசேஷ ரூப் சே கல்யுக் கா பிரபாவ் இத்தனா பாரி ஹோகா. காம் கர்னே வாலே லோக் உன்கே பாஸ் சமய நஹி ஹோகா சாஸ்திர படனே கா. ஸ்திரியோ கே பாஸ் கர் கே காம் சே டைம் நஹி மிலேகா சாஸ்திர கோ படனே கா. துகான்தார் கோ துகான் சலாதே ஹுயே காம் கர்னே கா டைம் நஹி மிலேகா. பிரம்மன் தோ பஹுத் கல்யுக் மே நாம் கே பச்சேங்கே கோய் ரஹேகா நஹி. தோ சப் லோகோ கோ சாஸ்திரோ கா சார் கேசே தியா ஜாய? ஔர் பஹுத் சிந்தன் கர்னே கே பாத் வியாஸ் தேவ் நே மஹாபாரத் கா ரச்சனா கியா. பத்ரிக ஆஶ்ரம் மே பேட்கர் கணேஷ் ஜி கா ஆவாஹன் கியா. பகவான் சங்கர் ஜி கே புத்ர கௌரி கௌரி நந்தன் கணேஷ் விகன் நாசிக் ஜோ சப் விகனோ கோ நாஷ் கர்த்தே ஹை உன்கா ஆவாஹன் கியா. ஔர் வியாசதேவ் கே சாம்னே கணேஷ் ஜி ஆயே தோ வியாசதேவ் நே கஹா, கணபதி கல்யுக் கே லோகோ கே கல்யாண கே லியே மே ஏக் சாஸ்திர கோ லிக்னா சாஹதா ஹூ. ஔர் மேரே பாஸ் கோய் உஸ்கோ லிக்னே வாலா நஹி ஹை. ஆப் உஸ்கோ லிக்னே கா கார்ய கீஜியே. ஆப் புத்தி கே தேவதா ஹை. ஆப் விகன் நாசிக் ஹை. ஆப்கே ஹாத் சே கியா ஹுவா சப் சுப் ஹோதா ஹை.
सारे मंगल कार्य आपके हाथ से होते हैं। आज एक मंगल कार्य और मैं आपको लिखाता हूं, और इस मंगल कार्य का आप लेखनी से लिखन कीजिए। गणपति ने कहा तथा अस्तु, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। बोला क्या? बोला आप बोलते जाएंगे, बोलने में कहीं आप रुकेंगे नहीं, और मैं लिखता जाऊंगा और लिखने में रुकूंगा नहीं। तब व्यासदेव ने कहा ठीक है, आपकी कंडीशन मुझे स्वीकार है, लेकिन एक मेरी भी कंडीशन है। बोला आपकी क्या कंडीशन है? बोला तुम जो लिखोगे सोच समझ के लिखोगे, उसके अर्थ को समझना फिर लिखना। इसलिए व्यासदेव बोलते बोलते जब कुछ सोचना होता था तो कोई एक ऐसा श्लोक कहते थे जिसको गणेश जी को थोड़ी देर सोचना पड़ता था इसका अर्थ क्या है, और तब तक वो दूसरा श्लोक बोलते थे। और आप में से कोई भाग्यशाली कभी योग बने तो उस स्थान को जाके आज भी देखा जा सकता है भारत में, बद्रिक आश्रम। बद्रिक आश्रम चार धामों में एक धाम है भारत के सनातन वैदिक संस्कृति का, जहां भगवान नर नारायण रहते हैं और भारत वर्ष के इष्ट देव नर नारायण हैं, और उनकी पूजा का कार्य नारद जी करते हैं। और वो स्थान बहुत सुंदर, बहने वाली नदी है वहां अलकनंदा, और अलकनंदा से वहां एक ही नदी भारत में एक जगह पे दिखती है, सरस्वती। उस सरस्वती और अलकनंदा के संगम से ऊपर व्यास देव का और गणेश जी के रहने के लिए केव है। उस केव के अंदर बैठ के गणेश जी ने महाभारत लिखा, और उस महाभारत के अंदर सारे शास्त्रों का सार भगवान श्री कृष्ण ने गीता रखा। तो गीता उपनिषद है, गीता वेद है, गीतो उपनिषद है। और उपनिषद और वेद पढ़ने का अधिकार भी सबको नहीं है, लेकिन व्यास देव ने उस वेद को महाभारत में रख के स्त्री को, काम करने वाले को, किसी भी को, सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया। मध्य महाभारतम अष्टादश अध्यायनी अम्ब भगवत गीते भव द्वेषणी, 18 अध्याय की ये माता गीता महाभारत के मध्य में है, मां है। गांधी जी भारत के स्वतंत्रता के युद्ध में जब अंग्रेजों के साथ बात विवाद में, बातचीत में कहीं बहुत बड़े विचलित होते थे, कोई उनके पास मार्ग नहीं दिखता था तो वो गीता की गोद में जाकर उसके शब्दों के अंदर अपनी मुश्किल का, अपनी समस्या का, अपनी डिफिकल्टी का कोई न कोई सॉल्यूशन, कोई समाधान निकालते थे। इसलिए गांधी जी कहा करते थे गीता मेरी माँ है, मैं जब मुश्किल में होता हूं तो गीता की शरण लेता हूं, और माँ की तरह मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर मेरे लिए नया कोई रास्ता, मार्गदर्शन का बता देती है। तो इसलिए गीता के महात्म्य में अम्ब कहा है गीता को, अम्बा, अम्बा का मतलब माता, गीता माता है। तो क्या सुनना चाहिए? श्रुण्वताम स्वकथा कृष्णा, जो श्री कृष्ण ने अपने मुख से कहा है उसको सुनना चाहिए। गणेश ने जिसको लिखा है वो ऑस्पिशियस है, वो विघ्नों से निवृत्त है, उसमें कोई विघ्न नहीं है। फिर भी ब्रिटिश शासन के कारण, और 1000 साल तक मुस्लिम शासन, 200 साल तक ब्रिटिश शासन ने हमारे लोगों के दिमाग में गलत धारणा बिठा दी कि गीता को घर में रखने से युद्ध होता है। जो गणेश जी ने लिखा है, जो मंगलकारी है, जिससे कभी अशुभ हो नहीं सकता है, कोई बाधा पड़ नहीं सकती है, विघ्न आ नहीं सकता है, उससे घर में विघ्न होगा, ये गलत है कि सही है? आप बताइए, जो गणेश जी जिसकी पूजा करके हम सारे कार्य करते हैं, यहां तक कि युद्ध में जाना है तो भी गणेश जी की पूजा करके जाते हैं, युद्धे च गृह प्रवेशे च। तो भगवत गीता की रचना गणेश के हाथ से हुई है तो उसमें अमंगल कैसे हो सकता है? हमने तो एक बार प्रार्थना करके कहा था कि इस संसार के लोगों का कल्याण उस दिन होगा जिस दिन, जैसे आज तक आज हर घर में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास अपना मोबाइल होना चाहिए, घर का एक हर एक सदस्य अपने पास एक मोबाइल रखना चाहता है, सबको मोबाइल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, सब कहते हैं मेरे को मेरा मोबाइल चाहिए, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो कहता है मेरा पीसी चाहिए, मेरा पर्सनल कंप्यूटर चाहिए। हम आपको विनती करते हैं, अगर आप शिवालय में बैठे हो और अपने जीवन में शुभ चाहते हो, मंगल चाहते हो, ऑस्पिशियस नाश चाहते हो, पुण्य चाहते हो, तो हर एक की अपनी पर्सनल गीता होनी चाहिए, हर एक की अपनी पर्सनल गीता होनी चाहिए, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल भगवद गीता की कॉपी। मोबाइल तुम्हारे दुनिया वालों से बात करने के लिए है और भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लिए है। जब भगवद गीता को खोलोगे तो उसमें लिखा है श्री भगवान वाचा, भगवान बोल रहे हैं और आप भगवान से बात कर रहे हो। जो आपको भगवान के साथ बात करने का सीधा रास्ता बताए उस शास्त्र को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, वो आपकी पर्सनल कॉपी होनी चाहिए, उसको नित्य निरंतर अपने जीवन का साथी बना लो, सांसों को श्वासों को संगीत बना लो, गोविंद को मीत बना लो, भगवान को मित्र बनाओ। दुनिया के मित्र साथी संगी साथ देने वाले नहीं है और ये कन्हैया कभी आपको धोखा देने वाला नहीं है। तो मंगल क्या है, शुभ क्या है, पुण्य क्या है, स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, उसी भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण बोलते हैं। बहूनी में जन्मानी तवचा अर्जुन तानी हम वेद सर्वाणी न तुम वेतत परम तप। अर्जुन परम तप, शत्रु को ताप देने वाले, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले, कई बार तुम और मैं इस धरती के ऊपर आए हैं, तुमको सब भूल गया लेकिन मुझे सब याद है। ये है अंतर भगवान में और जीव में। जीव और भगवान में अंतर यह है कि भगवान को कभी कुछ भूलता नहीं है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, पहले क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, भविष्य में क्या होगा। भगवान क्या ऋषि त्रिकाल दृष्टि हो सकते हैं, तो भगवान तो तीनों कालों के स्वामी है, काल के स्वामी भगवान है। कालो अस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो, काल मैं हूं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि मैं काल हूं, तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं मुझ में और अर्जुन तुझ में डिफरेंस ये है कि तुम्हें सब भूल गया और मुझे कुछ नहीं भूला है। तो भगवान को क्यों भूलता है और हमको क्यों नहीं, हमको भगवान को नहीं भूलता है और हमको भूल क्यों जाता है? Why we forget? Why Krishna never forgets? Reason is we change body. हमारा शरीर परिवर्तित होता है और शरीर हमको छोड़ना पड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण का शरीर पांच भूतों का बना हुआ नहीं है, अर्थ वाटर ईथर फायर पंच तत्वों का बना हुआ नहीं है, पृथ्वी आकाश वायु जल का बना हुआ नहीं है, वो चिदानंद घन है। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए सच्चिदानंद रूपाय। ये भागवत की प्रार्थना का भागवत के महात्मा का पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति हेतवे तापत्रय उन्मूलाय कृष्णा वयम नमो। व्यासदेव कहते हैं हम सब कृष्ण आपको नमस्कार करते हैं। बोला क्यों? बोला आपका रूप सच्चित आनंद है, सत का मतलब सदा रहने वाला, जिसका न आद है न अंत है वो सत है। सत का आरंभ नहीं होता, सत की बिगनिंग नहीं होती, सत का एंड नहीं होता, उसको सत बोलते हैं। हमारा ये शरीर सत नहीं है, असत है, ये तो समाप्त हो जाएगा हमारे आंखों के सामने, हमारे परिवार वाले उठा के जाके अग्नि संस्कार करेंगे। और भगवान का शरीर आनंदमय है, आनंद घन, उसके अंदर दुख नहीं, परेशानी नहीं। एक विदेशी भारत में भ्रमण करने गया, भारत के तीर्थ स्थानों और मंदिरों का अच्छी तरह से घूम के देखा, उसकी पर्यटक बना, टूरिस्ट बना। वो काशी भी गया, मथुरा भी गया, वृंदावन भी गया, द्वारका भी गया, दक्षिण भारत के भव्य मंदिरों के दर्शन किए, तिरुपति आदि के। और एक दिन पत्रकारों ने, न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने पूछा, सो आप लोग क्यों आए थे, व्हाई यू हैव कम इन इंडिया। उसने बोला, बिकॉज इंडिया अध्यात्मिकता इंडिया की गोद में जन्म लेती है, स्पिरिचुअलिटी टेक्स बर्थ इन दी ऑन द लैप ऑफ इंडियन सॉइल। भारत में अध्यात्मिकता जन्म लेती है। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक पुस्तक को देख रहा था, जीसस क्राइस्ट, जो ईसाई मत का स्थापना करने वाले, क्रिश्चियनिटी का जो पायोनियर है, फ्रॉम द एज ऑफ 14 टिल एज ऑफ 30 कहीं उसकी हिस्ट्री नहीं है। और उसकी हिस्ट्री खोज के निकाली है कि वो जगन्नाथपुरी इंडिया में रहे और वहां से चल के कश्मीर में रहे, और उन्होंने योगियों के संग में आध्यात्मिकता का अनुभव किया, और 30 साल के बाद वापस जेरूसलम गए, वहां 30 साल के बाद गए, और तब तक उन्होंने आध्यात्मिकता का सारा खजाना भारत के अंदर से संतों साधुओं के संग में, बोधों के संग में, नाथ योगियों के संग में, और जगन्नाथ पुरी के पंडितों के संग में आध्यात्मिकता की सारी उपलब्धि को प्राप्त किया, और फिर जाके प्रचार किया। और जब उसको क्रॉस के ऊपर सेक्रीफाइस किया गया तो गले में कुछ नहीं लगाया, चार हाथों में चार कील, दो कीलों हाथों में, दो कील पांव में लगाई थी, और उसके डिसाइपलों ने उसको वहां से उठाया और वो जीवित था, और वो चल के वापस भारत में आया। और अभी भी भारत में कहां कहां से गुजरा और कितना समय रहा, उस पुस्तक में रिसर्च करके लिखा हुआ है। ये एक दुनिया का बड़े धर्म की मैं बात कर रहा हूं। बौद्ध धर्म का तो जन्म ही गया में बुद्ध का हुआ है, जो अभी जापान और जर्मनी तक फैला हुआ है, और सारा जो है ये फार ईस्ट बौद्धिज्म में ये बुद्ध तो भारत से निकला। और ऐसे और भी प्रॉफिट भारत में रहे हैं और आध्यात्मिकता का जिज्ञासा की है, तो भारत आध्यात्मिकता का क्रेडल है। वहां किसी को आध्यात्मिकता की प्रगति करनी है तो भारत। अभी मैं थोड़ी देर पहले कुछ लोगों से बात कर रहा था, तब ये प्रश्न उठा के, भगवान अभी हम क्या मनाने जा रहे हैं, जन्माष्टमी का उत्सव, और तीन एक महीने पहले अप्रैल में हमने रामनामी मनाई, और मई में हमने नरसिंह चतुर्दशी मनाई, भगवान नरसिंह का प्रकट्य दे मनाया, और अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो गीता जयंती आएगी, गीता का प्रकट्य दिवस आएगा, फिर अन्य और भगवानों के अवतारों के वर्णन। प्राय हमारे हर महीने में कोई न कोई एक उत्सव है ही, मार्च में चैतन्य महाप्रभु का, गौर पूर्णिमा का महाउत्सव आता है, होली के समय में, तो इतने सारे भगवान सारे भारत में ही क्यों पैदा हुए, दुनिया में और क्यों भगवान ने अवतार नहीं लिया, ये लोग कभी प्रश्न पूछते हैं। तो हम आपसे पूछते हैं कि भगवान ने और कहीं अवतार क्यों लिया, नहीं लिया, इसका कारण क्या है। हाँ जी, भाई शिवालय को बने हुए कितने साल हो गए, ये शिवालय कब बना है। हाँ जी, ये स्ट्रक्चर को देख के कहा जा सकता है 5-7 साल से तो पहले का है, हो सकता है इससे ज्यादा पुराना हो। हाँ, बहुत ज्यादा साल हो गए ना, लेकिन मैं तो 6 साल से मॉरिशस में आ रहा हूं, इस शिवालय में कभी नहीं आया। क्यों? 6 साल से मैं मॉरिशस में आ रहा हूं, और नहीं तो भी 6 साल में मैं 12 महीने से ज्यादा मॉरिशस में रहा हूं, लेकिन एक दिन भी यहां क्यों नहीं। 12 महीने में 365 दिन होते हैं, तो 365 में मैं एक दिन शिवालय में नहीं आया, कारण क्या? क्यों नहीं आया बोलो? क्योंकि किसी ने बुलाया नहीं। आज बुलाया तो आज आया, तो भगवान को और कोई बुलाता ही नहीं है तो वहां क्यों जाएंगे? वो जानते ही नहीं है तो बुलाएंगे कहां से? और मैं आपको सत्य कहता हूं, पहले दुनिया में आधी दुनिया तो मानती भी नहीं है कि भगवान है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को 10 दिन तक अकेले को बिठाकर, आप एक मिनट के लिए थोड़ा सोचिए, भगवान श्री कृष्ण एक ही आदमी को पूरी भगवद गीता का उपदेश दिया, जबकि बहुत हजारों लाखों आदमी, मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड में खड़े थे, और बहुत बड़े विद्वान बुद्धिमान भी उनमें थे। कितना फॉर्चुनेट अर्जुन रहा होगा कि एक पर्सन को भगवान ने, वन पर्सन, एक व्यक्ति को 1 2 3 करके सिखाया, जैसे बच्चे को सिखाते हैं, और तब तक सिखाया जब तक अर्जुन ने अपने मुख से नहीं कहा नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तो प्रसादात अच्युत, हे अच्युत आपकी कृपा से अब मेरा मोह नाश हो गया है और मुझे मेरी स्मृति आ गई है। क्या तुम्हें स्मृति आ गई? दासो अस्मी, मैं आपका दास हूं। जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, आज मुझे याद आ गया कि मैं आपका सेवक हूं। कर्ष्य तव वचनम, अब जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। अर्जुन ने जब ये कहा तो भगवान ने कहा उठाओ धनुष और करो युद्ध, और तब अर्जुन ने युद्ध किया। तो एक व्यक्ति को श्री कृष्ण ने 1.5 घंटा भगवद गीता की शिक्षा युद्ध भूमि में शंख बजने के बाद दी। वही भगवान श्री कृष्ण जग भक्त के रूप में चैतन्य महाप्रभु बन के आए तो 10 दिन तक 10 डेज गंगा जमुना सरस्वती के संगम के स्थान के ऊपर रूप गोस्वामी को रस शास्त्रों की शिक्षा दी। और उस शिक्षा के अंदर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इस दुनिया में असंख्य लिविंग एंटिटीज हैं, कोटि कोटि जीव हैं, उसमें से कुछ चल सकते हैं कुछ चल नहीं सकते हैं, कुछ स्थावर है कुछ जंगम है, पेड़ है तो जीव लेकिन चल नहीं सकता, प्लांट है चल नहीं सकते हैं, और जो चल सकते हैं उसमें सबसे कम ह्यूमन बीइंग है, अल्प ह्यूमन बीइंग है, 9 लाख जल के अंदर है, 900,000 स्पीसीज जलानी 9 लाख, परंदे जो उड़ते हैं आकाश में उनकी संख्या 11 लाख से ऊपर है, 1100,000 से ऊपर है। ह्यूमन बीइंग की स्पीसीज ओनली 400 मिलियन है। अमंग द ह्यूमन बीइंग्स ऑलमोस्ट हाफ दे डोंट नो व्हाट इज रिलीजन व्हाट इज धर्म, नास्तिक हैं। ये भगवान कह रहे हैं, और भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित यतति सिद्धये यततां पि सिद्धानां कश्चिन माम वेति तत्वता, हजारों में से कोई एक होता है जो कम से कम ये अपने आप से पूछता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं, इस दुनिया में दुख क्यों है, अरे कोई जगह है जहां सुख हो, और मैं कहां जाऊंगा मरकर, और सभी मरते हुए जा रहे हैं, जो इस दुनिया में आए हैं उसमें से एक भी जीवित नहीं है। ये बड़ा प्रश्न है, अपने आप से कभी पूछना चाहिए कि एक दिन हमको जाना पड़ेगा, और उस जाने की हमने कभी तैयारी की है कि कहां जाना है, हमने जानकारी प्राप्त की है कि हमको कहां जाना है? आपसे मैं पूछता हूं क्या हमको कहीं कभी जाना पड़ेगा कि नहीं, एक दिन जाना पड़ेगा इस दुनिया से कि नहीं? आप में से कोई एक हाथ उठा के कहेगा कि मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई है कह सकता है? नो. मुझे आश्चर्य, एक बार प्रभुपाद को अमेरिका में इस न्यूज रिपोर्टर ने पूछा, आप भारत से आए हैं, वहां तो डेथ रेट बहुत ज्यादा है, आप अमेरिका को क्या शिक्षा देने आए हो? व्हाट यू विल गिव द टीचिंग टू द अमेरिकन, यू हैव ए मोर डेथ रेट देन अस. प्रभुपाद ने मुस्कुराते हुए कहा, देयर इज 100% डेथ रेट एवरीवेयर. पूरी दुनिया में 100% लोग मरते हैं, जो जन्म लेता है वो मरेगा. और जो ये सोचता है कि मुझे एक दिन यहां से जाना है वो बुद्धिमान है. कहां जाना है ये पूछता है वो बुद्धिमान है. अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेद का वर्णन है, ये वेद में लिखा है. आदमी को आदमी तब कहा जाएगा जब वो जिज्ञासा करे, मैं क्यों आया हूं यहां, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, वेयर आई हैव टू गो, हु एम आई, मैं कौन हूं. तो ऐसे जो मैं कौन हूं इसकी जिज्ञासा करते हैं, ऐसे हजार जब इकट्ठे होते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं उनमें से ओनली वन नोज मी इन ट्रुथ. तो श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मानव अल्प है, मानवों में आधे तो धर्म को जानते नहीं है, और आधे में से ज्यादा जो कहते हैं हमको धर्म को जानते हैं वो धर्म को मानते नहीं है. धर्म को जानते हैं लेकिन मानते नहीं है. नाम का धर्म है, शास्त्र का किसी को जानकारी नहीं है. मैं आपसे पूछ लूं कि आप में से कितनों ने भगवत गीता पढ़ी है, तो मेरे ख्याल में 2-4-5 हाथ मुश्किल से ऊपर आएंगे. ये सच है कि झूठ है? और ये एक और गांधी जी रोया करते थे, कभी कहते थे कि छोटे बच्चे को क्रिश्चियन बाइबल को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चे को मोहम्मदन कुरान पढ़ाते हैं. दुर्भाग्य है कि सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में जन्म लिए बच्चे को भगवत गीता नहीं पढ़ाते, बड़ी दुर्भाग्य की बात है. और गांधी के आश्रम में रोज भगवत गीता के 12वें अध्याय, भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का पाठ होता था निरंतर हमेशा, और राम नाम का जप होता था. मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे बच्चे गीता क्यों नहीं पढ़ते? हमारे बच्चों को गीता पढ़ाना इतना जरूरी है जितना हमारे को बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कराना जरूरी है. आप लोग बच्चों को वैक्सीनेशन कराते हैं, पोलियो के ड्रॉप पिलाते हैं बच्चों को, जाते हैं अस्पताल पिलाने के नहीं? हाँ, डीपीटी के टीके लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ, वाई? बच्चों की वैक्सीनेशन क्यों कराते हैं? नहीं कराएंगे तो हो सकता है बीमार हो जाएं, पोलियो के कारण टांग टेढ़ी हो जाए, लेग ट्विस्टेड हो जाए, हो सकता है डिसेबल हो जाए, नहीं तो कोई परमानेंट डिजीज हो जाए जिससे बच ना सके. तो प्रिवेंशन के लिए लगाते हैं, है ना? ऐसा कोई आपके पास इम्यूनाइजेशन की दवा है कि आपके बच्चे का दिमाग खराब ना हो जाए और कल मां बाप को घर से ना निकाल दे, ऐसी कोई दवा है किसी के पास? ऐसी अस्पताल में कोई दवा मिली है जिसको बच्चे को पढ़ाओ और बड़ी उम्र में मां बाप को घर से ना निकाल दे? हाँ, नहीं है ना? इसलिए बच्चों को भगवत गीता पढ़ा लो. जिसने भगवत गीता की शिक्षा बच्चों को दे दी, उसमें वेदों का ये वाक्य सिखाया जाएगा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव. तेरी मां तेरे लिए पूजने है, तेरा पिताजी तेरे लिए पूजने है. जिस दिन माता पिता का सम्मान न करे बच्चा, समझ लो संस्कृति संस्कृति नाश की ओर जा रही है. दैट सिविलाइजेशन इज गोइंग टू बी रुइंड वेयर द चिल्ड्रन आर नॉट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ देयर पेरेंट्स. आपके आइलैंड के ऊपर घर घर में राम कथा होती है, रामायण का पाठ होता है, लेकिन एक ही तो रामायण का संदेश है, माता पिता की आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल वनवास राम जी चले गए थे. यहां वनवास तो नहीं कहते हैं, लेकिन माता पिता जी कहते हैं पानी पिलाओ, वो भी कोई नहीं पिलाता. तो ये शिक्षा जिस देश में हो, जिस धर्म में हो, जिस जाति में हो, उसके अंदर भी अगर मर्यादा नहीं हो तो समझना चाहिए कि उन शास्त्रों को हम केवल तोते की तरह पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें क्या लिखा है उसको हमने समझने का प्रयास नहीं किया। तो महाप्रभु कह रहे हैं ऐसे धर्म का नाम लेने वाले बहुत हैं कि मैं धर्मी हूं, लेकिन धर्म को जानते नहीं। कोटि कर्मी मध्य कोई एक ज्ञानी श्रेष्ठ। जो थोड़े बहुत धर्म को जानते हैं वही कहते हैं कर्म ही श्रेष्ठ है, भगवान ने कर्म की बात की है, हम कर्म करेंगे। ऐसे हजारों लाखों कर्म इकट्ठे होते हैं, कोटि का मतलब 10 मिलियन कर्मी इकट्ठे होते हैं, उनमें से एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है जो ये जानता है कि सब कुछ यहां रह जाएगा, एक दिन मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, ये घर छोड़ना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा, दुकान मकान छोड़ना पड़ेगा, बैंक बैलेंस छोड़ना पड़ेगा, न गाड़ी चलेगी न मोटर साथ चलेगी, और मैं भी खुद नहीं चलूंगा, चार आदमी मुझे उठा के ले जाएंगे, वो ज्ञानी है। कोटि ज्ञानी मध्य कोई एक मुक्त। ऐसे ज्ञानियों में भी कोई एक होता है जो जीवन मुक्त होता है, इस दुनिया में रहता है लेकिन बेपरवाह होता है। आज का दिन ह्यूमन हिस्ट्री में, वर्ल्ड ह्यूमन हिस्ट्री में, पूरे विश्व के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट डे है। एक ऐसा व्यक्ति, 1 पर्सन, 57 ईयर्स बैक, हमारे जीवन काल में, इन माई लाइफ टाइम, 57 ईयर फ्रॉम टूडे, ही लेफ्ट मोस्ट होलीएस्ट प्लेस इन इंडिया, वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली का को प्रणाम करके, उस स्थली को अपने हृदय में विराजमान कर फिजिकली वहां से पूरी दुनिया को सनातन वैदिक धर्म, भगवत गीता, भागवत का संदेश देने के लिए एक कार्गो शिप में कलकत्ता से आज के दिन चढ़े थे। परम पूज्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भगवत भक्ति विदान स्वामी शिला प्रभुपाद एक ऐसा अनमोल, एक ऐसा युग पुरुष है, एम्बेसडर ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आज के दिन भारत से, भारत के दिव्य संदेश को लेकर पाश्चात्य देश में प्रचार के लिए 70 ईयर की एज में निकले थे, और उसके परिणाम, उसके रिजल्ट के रूप में आज दुनिया के कोने कोने में ये ऐसे आप बैठे हैं, इस तरीके से कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है, राम जन्म उत्सव मनाया जाता है, गौर पूर्णिमा मनाई जाती है, घर घर तक भगवत गीता पहुंचाने का प्रयास और अभियान चल रहा है, गली गली में हरे कृष्ण हरे राम मंत्र गाया जा रहा है। एक व्यक्ति का ये दुनिया के ऊपर बड़ा उपकार है, बड़ी कृपा है, बड़ी दया है। ये एक व्यक्ति उस दिन निकले थे और आज पूरी दुनिया वैदिक सनातन धर्म को जानती है, पहचानती है, हरे कृष्ण हरे राम को दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, चाइना चले जाओ, रशिया चले जाओ, आपको हरे कृष्ण हरे राम वाले कौन हैं, क्या करते हैं वो जानते हैं, भगवद गीता क्या है उनकी भाषा में उपलब्ध है। तो कोटि मुक्त मध्य कोई एक भक्त श्रेष्ठ, दुर्लभ, ये भगवान कहते हैं, ऐसे जो मुक्त हैं उनमें भी कोई एक ऐसा भक्त श्रेष्ठ है जो पूरी दुनिया का उद्धार एक भक्त कर सकता है। भागवत में लिखा है उद्गायंती नृत्यंती, जो आनंद में विभोर होकर गाए, नारद की तरह हाथ ऊपर उठा के नाचे, हनुमान की तरह गाते हुए मगन होके आंखों से आंसू धाराएं बहें, ऐसा एक व्यक्ति पूरे पूरे भूमंडल को, पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर सकता है। और ये ऐसा भागवत के श्लोक के अनुसार ऐसा एक युग पुरुष स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एम्बेसडर प्रभुपाद जी है, जिसने पूरे भविष्य के अंदर भगवान के वचन को सत्य किया। भगवान चैतन्य महाप्रभु का ये प्रोफेसी है, ये भविष्यवाणी है कि दुनिया के कोने कोने में, हर नगर में, हर ग्राम में, एवरी सिटी एंड टाउन एंड विलेज, देयर विल बी चेंटिंग अप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एंड पीपल विल नो एंड विल रिसीव द मर्सी ऑफ मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन गौरंग महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु। ये दो चंद्रमा के रूप में उदय हुए हैं और संसार को शीतलता देने के लिए, और दुनिया के कोने कोने में इनका नाम जाना जाएगा। आज देखो यहां विराजमान है गौर निताय ऊपर। एक महीना पहले हम रशिया में थे, महीना के 20 दिन पहले रशिया में थे, और ऐसे 10 बड़े नगरों के अंदर हमने सुंदर गौर निकाय के मंदिर, बड़े बड़े भक्तों को, रशियन भक्तों को आनंद में मगन होके, साड़ी पहने हुए, तिलक लगाए हुए, धोती पहने हुए, कीर्तन करते हुए देखा। ये दुनिया के अंदर हिस्ट्री चेंज हो गई। वन पर्सन हैज चेंज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। 5000 ईयर्स के बाद जब दुनिया में पता नहीं कहां क्या होगा, और तब हिस्टोरियन कहीं पुस्तक मिलेगा, अरे भगवत गीता है चाइनीज में, हाँ रशियन में भगवत गीता है, ये तो भगवत गीता पोर्चुगीज में है, और यहां ये तो राधा कृष्ण का मंदिर रशिया में पड़ा है, ये तो अफ्रीका के अंदर सीताराम का मंदिर पड़ा है। तो सनातन वैदिक संस्कृति पूरे दुनिया के कोने कोने तक ऑलरेडी एस्टेब्लिश थी। देन द हिस्टोरियन विल राइट दैट। और एक्चुअली ये पूरा जो धरती का, धरती जितनी भी है, इसका नाम भारतवर्ष है। वेदों में इसी को भारतवर्ष कहते हैं। ये तो इंसान ने बाद में इसके टुकड़े टुकड़े करके उसके ऊपर राज करना शुरू किया। इस पूरे भूमंडल के ऊपर एक व्यक्ति ने सनातन वैदिक धर्म को स्थापित किया है, और एक दिन, आज का वो दिन है, 57 year back, 3rd August, that person has left his own birthplace, Calcutta. Lonely person left. कोई साथी नहीं, कोई संगी नहीं, न कोई सहायता, न कोई धन, न कोई शिष्य, न कोई ओनली सहायता क्या थी? श्रीमद भागवत, जो उन्होंने अंग्रेजी भाषा में लिखी थी, वो भाषा जो पूरी दुनिया जानती है, वही उनका धन था, और हरे कृष्ण मंत्र उनका आश्वासन था। एंड ही स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया एंड आफ्टर ऑलमोस्ट एन मंथ ही लैंडेड इन अमेरिका, एंड देन आफ्टर ए ईयर ही एस्टेब्लिश्ड इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इन 1965 में गए थे, 66 में एस्टेब्लिश किया। यहां अपने मॉरिशस में भी 2 बार आए थे, और उन्होंने देखा यहां के लोगों को, कहा ये तो लोग पहले से ही भक्त हैं, बस थोड़ा सा इनके ऊपर पाश्चात्य संस्कृति का कर्टेन चढ़ा हुआ है, पर्दा चढ़ा हुआ है वेस्टर्न कल्चर का। इफ समबडी रियली टियर इट ओपन, दे आर नेचुरल डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। ये भगवान के भक्त है। जहां हर घर में भगवान का परम भक्त हनुमान विराजमान है, वो भक्त कैसे नहीं हो सकते हैं? वो भक्त हैं, तब भक्त उन्होंने घर में रखा है, नहीं तो वाई शुड दे कीप हनुमान? हनुमान तो भगवान का भक्त है, तो भक्त को घर में क्यों रखेंगे जगह अगर वो भक्त नहीं होंगे? जो भक्त होगा वो भक्त को घर में रखेगा। तो आप भक्त तो पहले से हैं। तब ये श्लोक हमने आपके लिए पढ़ा भागवत से, श्रृणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। अगर आप श्री कृष्ण के मुख से कही हुई कथा गीता, श्री कृष्ण की महिमा में गाई हुई गीता भागवत, उसका केवल श्रवण करेंगे, केवल सुनेंगे, लाभ क्या होगा? व्हाट इज द बेनिफिट? कोई मूर्ख भी बगैर फायदे के कुछ नहीं करता. इफ देयर इज नो बेनिफिट नोबडी विल लिसन. तो व्हाट इज द बेनिफिट? हृदय अंतःस्थानी अभद्राणी. हमारे अंदर में मन में जितना भी अशुभ है, हमने कहा शिवालय अशुभ को बोलते हैं, जितना अशुभ है, अशुभ का मतलब इनऑस्पिशियस अनवांटेड विकार जितने भी हैं. हम आपसे प्रश्न फिर पूछते हैं, रोज स्नान करना जरूरी है, करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग तो रोज स्नान करते हैं, भारत मूल के हैं, वैसे पाश्चात्य देशों में लोग 7-7 दिन में मुश्किल से स्नान करते हैं. हाँ, तो ये जितनी कोई पूछे कि मैं कैसे, कौन से, ऑन व्हाट बेसिस आई एम टेलिंग दैट दे आर नॉट टेकिंग बाथ, व्हाट इज द प्रूफ? द प्रूफ इज परफ्यूम. काय के लिए परफ्यूम, परफ्यूम बनाने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि स्नान करते नहीं है, इसलिए परफ्यूम लगा के काम चलाते. इफ दे टेक बाथ, व्हाट इज द नीड ऑफ स्प्रे? वो 7-7 दिन स्नान करते नहीं. हाँ, सच बोलता हूं मैं. प्रभुपाद ने अमेरिका से अपने एक गार्ड ब्रदर को चिट्ठी में लिखा कि ये लोग टॉयलेट में जाने के बाद पानी से सोच भी नहीं लेते हैं, तो इनको मैं कहां से संस्कृति सिखाऊं? टॉयलेट में पानी नहीं है. मैं अभी रशिया में मैं देख के आया, किसी घर में, किसी एयरपोर्ट के ऊपर टॉयलेट में पानी नहीं है, पेपर रखा हुआ है. तो जो सिंपल स्नान करना और सोच आदि सिंपल जो हमारे बच्चे को जन्म से सिखाया जाता है वो भी नहीं जानता है, उसको कहां से शिक्षा दें और कौन सी शिक्षा दें? तो मैं प्रश्न क्या पूछ रहा था, स्नान करते हैं ना रोज मेरे भाई, क्यों करते हैं? सुबह सवेल उठ के रोज ब्रश करते हैं ना, क्यों करते हैं? नहीं करेंगे तो दुर्गंध आएगी, नहाएंगे नहीं तो शरीर से बेड स्मेल आएगी. अंदर में कितना कचरा पड़ा है उसके धोने के लिए आपके पास कोई साबुन है, कोई पेस्ट है? क्रोध पड़ा है, काम पड़ा है, एनवीएसनेस पड़ी है, अहंकार पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब अंदर पड़े हैं. पड़े हैं कि नहीं पड़े? उनको धोने के लिए कोई साधन है, कोई साबुन है, कोई पेस्ट है? अरे भगवान कह रहे हैं तेरे अंदर में जो ये कचरा पड़ा है धुनौती मैं धोऊंगा, मैं इसको धो के साफ करूंगा. धुनौती का मतलब धोना. किसका धोए, क्यों धोगे? भगवान कहते हैं इसलिए मैं धोऊंगा सोहृद. सोहृद का मतलब मैं आपका शुभ चिंतक हूं. सोहृद किसको कहते हैं? इस दुनिया में एक होता है फ्रेंड. तुम मेरे काम आओगे, मैं तुम्हारे काम आऊंगा. एक होते हैं रिलेटिव्स. तुम मेरी शादी में आएगा, मैं तेरी शादी में आऊंगा. एक होता है सुहृद. तुम आओ या ना आओ, लेकिन मैं तुम्हारी सेवा में हमेशा रहूंगा. इस दुनिया में सुहृद कौन है? मां. बच्चे के लिए सारी रात जागेगी, लेकिन बच्चे को सुखी देखना चाहेगी. बच्चा सोए मां जागेगी. जो अपना जिससे प्रेम करे उसको सुखी देखना चाहे, स्वयं कितनी भी कष्ट आए उसको सहने के लिए तैयार हो, उसको सुहृद बोलते हैं. और भगवान कौन है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम. मैं हर एक प्राणी का सुहृद हूं. और सुहृद का दूसरा अर्थ है सबकी दिल में मैं बैठा हुआ हूं. जो तुम्हारी दिल में है मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ और तुम्हारे दिल में बैठा हूँ, तुम मुझे देख नहीं रहे हो, तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, इसलिए दुनिया में भटक रहे हो। जिस दिन तुम मुझे जान जाओगे, पहचान जाओगे, उस दिन तेरा दुख समाप्त हो जाएगा। तो भगवान सुहृद है, और सताम किसको कहते हैं? भगवान के भक्त, जो भगवान की कथा सुनते हैं। आप जैसे श्रद्धालु लोग जब भगवान की कथा सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं, कहीं बाहर नहीं है। वो अंदर से सारे मैल को, सारे इन ऑस्पिशियसनेस को, सारे काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को क्लीन इट, उसको क्लीन कर देंगे, उसको साफ कर देंगे। आपके यहाँ 3 दिन कृष्ण कथा, हरि कथा, भगवत कथा का आयोजन किया है, और कथा के आयोजन के विषय में नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में संवाद है, और परीक्षित महाराज कहते हैं, श्रृण्वताम श्रद्धया नित्यम, जो नित्य प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ भगवान की कथा सुनता है, रामकृष्ण कथा सुनता है, श्रृण्वताम श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम, केवल कान से नहीं सुनता, उस कथा को ग्रहण करता है, उसको समझने का प्रयास करता है और हृदय में उतारने का प्रयास करता है, चेष्टा करता है, एंडेवर्स टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई इन लाइफ। एक जगह एक फेस्टिवल था, एक बड़ा उत्सव था, बाहर सामान बेचने वाले बैठे थे, एक मूर्तियां बेच रहा था, मूर्तियां समझते हैं ना, मूर्ति बेच रहा था। तो 3 मूर्तियां 4 मूर्तियां एक जैसी थी, सेम कलर, सेम शेप, सेम साइज। बोला ये पहली मूर्ति चाहिए, कितने की है? बोला फ्री। बोला दूसरी 10 रुपीज, थर्ड 100 रुपीज, फोर्थ 1000 रुपीज। पर दे आर लुकिंग सेम, तो हमको फ्री वाली दे दो। भाई लोग सब फ्री में सब पसंद करते हैं। उसने बोला नहीं, इफ यू हैव टू बाय, यू हैव टू बाय ऑल 4, फ्री इज अलॉन्ग विथ अदर 3, यू बाय 3 यू विल गेट फ्री। तो 1110 रुपया दे के 4 ले, तो कोई नहीं ले। बोला फ्री में एक 10 ऐसी, सेम फ्री में और सेम 1000 में। सो एक आदमी बुद्धिमान था, उसने कहा ओके आई पे यू, गिव मी ऑल 4, बट व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन प्राइस? भाई इनके 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 इनकी कीमत अलग क्यों रखी है, मूल अलग क्यों है? तब उसने कहा देखो मैं कथा के बाहर बैठा हूं ना, ये मूर्तियां तुमको बताती बताएंगी कि कथा सुनने वाले कैसे होते हैं। पहली मूर्ति को उठाया, जो कौन सी थी, फ्री उठाया, उसके कान में यहां से एक वायर डाला और वायर यहां से बाहर निकल आई। बोला ये वो सुनने वाले हैं जो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, बाहर चले जाते हैं, ये फ्री वाले सुनने वाले, ये प्रसाद खाते हैं, अपने घर जाते हैं, बस हो गया, कथा थी, कथा में महाराज जाने, महाराज की कथा जाने, हमारा काम हो गया, ये फ्री की है। बोला ये 10 रुपये वाली, कान में डाली, नहीं नहीं अभी मैं कहने में थोड़ा भूल गया, पहले वाले में यहां से डाली अंदर नहीं गई, यहां से डाली अंदर नहीं गई। बोला ये क्या है? बोला ये है जो कथा में बैठता है, एक शब्द भी कान में नहीं जाने देता है, वो अपने ही सोच में बैठा है या सोया हुआ होता है। ये मुफ्त की मूर्ति है, जाता है कथा में, कान में एक शब्द को भी अंदर नहीं आने देता है। नहीं तो प्राय सबसे ज्यादा लोग कहां सोते हैं? कथा में। एक माता जी हमको मिली, कहा प्रभु जी आपकी कथा दो घंटे में आज हमको जो सुख मिला, कितनी बार बॉम्बे से लेके इंग्लैंड तक इलाज कराने गई जो लाभ नहीं मिला, आज आपकी कथा में मिला। मेरी माँ ऐसा कौन सा आपको लाभ मिला? पूरा दो घंटे पूरे नींद किया, नहीं तो दवाई का खर्चा कर करके थक गई थी। कितने डॉक्टरों ने दवाई दी, नींद तक नहीं आई। क्या महाराज आपकी कथा है, आज सो के सुख लिया। एक पंडित जी कथा करने वाला इस दुनिया से चल बसा तो वैकुंठ के दरवाजे के ऊपर उसको अंदर जाने नहीं दे दरबार। बोला अंदर नहीं जा सकते हो, बैठ जाओ। बोला मैं रोज कथा करता था, मैं जब तब करता था। बोला चुप करके बैठ जाओ। तब एक आदमी आया, बाल बिखरे हुए, आंखें फटी हुई, और दरवाजा खोल के अंदर ले गए वैकुंठ में। ये उठ के एजिटेशन करने लगा, प्रोटेस्ट करने लगा, ये क्या है, मैं कथा करता हूं, मेरे को नहीं ले जाते हो अंदर? और ये कौन था, देखो कोई शक्ल भी नहीं दिखने में की अच्छी थी, काम भी अच्छे नहीं किए, इसको क्यों अंदर जाने दिया? बोला सुनो, तो कौन था ये? बोला बस का ड्राइवर था। बोला बस ड्राइवर जा सकता है वैकुंठ में और कथा करने वाला पंडित नहीं जा सकता? बोला सुनो, ये बस ड्राइवर इतना रफ था, ये जब बस चलाता था तो सारे पैसेंजर राम 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 करके टाइम पास करते थे, और महाराज तुम जब कथा करते हो सब लोग सो जाते हैं। तो इसने बहुत से लोगों को राम राम जपाया है, लेकिन महाराज तेरी कथा में आधे सोए हुए होते हैं। तो वो जो मुफ्त वाली मूर्ति है वो ऐसे होते हैं, ना इधर से तार जाती है ना इधर से तार जाती है। फिर उठाई 10 रुपए वाली, वो इधर से तार डाला, यहां से निकल आया। बोलिए जाते हैं कथा में, यहां से सुनते हैं, यहां से निकाल देते हैं। एक दुकानदार था, दुकान चलाता था, रोज कथा में जाता था। दुकानदार का शादी हुई, बेटा पैदा हुआ, बेटा बड़ा हुआ, बेटा दुकान पे बैठने लगा। एक दिन बेटा दुकान के ऊपर बैठा था, अनाज का दुकान था, ग्रेन्स मर्चेंट था। तो कोई लोग कुछ चीज को पूछने आए, उसको रेट का पता नहीं था, वो कथा में गया। और कथा में पंडित जी कह रहे थे, देखो गोपाल भगवान श्री कृष्ण गायों की सेवा करते थे, इसलिए गाय कभी आए तो उसको खिलाना चाहिए, कभी भी उसको भगाना नहीं चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। तब तक बच्चे ने बाप को कहा, पिताजी जल्दी चलो दुकान पे कोई आया है। बोला मैं आ रहा हूँ, कथा समाप्त होती है। वो दुकान पे गया बच्चा तो एक बैल आया और बाहर रखे हुए चावल को खाने लगा। तो बेटा बोलता है, बड़ा हमारे भाग है, आज गौ माता हमारे यहाँ आई है, क्या बड़ा शुभ कार्य हो रहा है, मंगल कथा सुनी और भगवान ने गाय को भेज दिया। इतनी देर में बाप कथा से आया, 2 सोटी मारी बैल को, 2 थप्पड़ मारी बच्चे को। बोला अंधा है, देखता नहीं है, खा रहा है। बोला पिताजी यही तो कथा में मैंने सुना, पंडित जी कह रहा था गाय। बोला ये तो मैं 10-20 साल से कथा सुन रहा हूँ, तो कथा की बात घर में थोड़ी लाते हैं, कथा में सुनी कथा में छोड़ के आए। तो ऐसे बहुत कथा वाले होते हैं, यहां से सुनते हैं यहां से निकाल देते हैं। 100 रुपए वाली मूर्ति उठाई, इधर से वायर डाली, कान से नहीं निकली, मुंह से बाहर निकली। बोला ये क्या? बोला ये शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, इनका कोई गुरु नहीं, कहीं शिक्षा नहीं ली है, कभी टीवी से सुना, कभी टेप रिकॉर्ड से सुना, और जगह जगह कथा करके अपने आप को पंडित करते हैं, बना के घूमते रहते हैं। और ऐसे बहुत हैं जिन्होंने कहीं शिक्षा न ग्रहण की नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई शास्त्र नहीं, और ऐसे बहुत बड़े कथा करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा पता है कौन है? हमारे नेता लोग। जब पॉलिटिशियन को बुलाते हैं ना, तो आप रामायण में बुलाओ तो राम रामायण की कथा करेगा, और उसने एक दिन रामायण को खोल के पढ़ा नहीं होगा, और बड़ा प्रवचन देगा। मुझे आश्चर्य लगता है कि इन लोगों को ABC भी मालूम नहीं है, जिस चीज की उसके ऊपर प्रवचन देते। बोला ये वो सुनने वाले हैं। बोला फिर ये 1000 रुपया किसका लेते हो? तब उसकी वायर कान में डाली, न कान से निकली न मुंह से निकली, सीधी दिल में चली गई। बोला ये वो सुनने वाले हैं, एक बार सुनते हैं और जीवन भर उसके ऊपर चलते हैं, ये जो सुनते हैं उसके ऊपर जीवन भर चलते हैं, ये असल में सुनने का लाभ लेते हैं। तो वहां भागवत में लिखा है ग्रहणतश्च स्वचेष्टितम्, कान के द्वारा हृदय में जो कथा को ले जाता है उसको क्या मिलेगा, कालेन अति दीर्घेण, बहुत समय नहीं लगेगा, क्विकली भगवान विशते हृदय, भगवान आके हृदय में प्रवेश करके बैठ जाएंगे। जो कथा सुनेगा उसके हृदय में भगवान बैठ जाएंगे। बोला कहां से आएंगे, प्रवेश करण रंध्राणाम, कान के द्वारा आएंगे। भगवान कान के गेट से हृदय में जाते हैं और हृदय में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, धुनोति शमलम कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण बैठ के भक्त के हृदय में जो कथा सुनता है और कथा को समझता है और कथा को जीवन में उतारता है उसके हृदय के सारे मैल धो के साफ कर देते हैं, उनका जीवन उजला हो जाता है, जीवन निर्मल हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो हम आपसे विनती कर रहे हैं कि दो दिन और उत्साह के साथ कथा सुनो और कथा को समझो और ग्रहण करो, आपका जीवन सफल करो, भगवान आपके हृदय में आएंगे, वही आपके हृदय को साफ करेंगे। हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, हम अपने आप भी नहीं कर सकते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो अपने आप को धो के साफ नहीं कर सकता है, माँ धो के साफ करती है। इसलिए मंदिर में प्रार्थना कहाँ पंडित जी सिखाते, क्या है भगवान के सामने खड़े होके क्या कहते, तुमेव माता च पिता तुमेव, पहले भगवान को माता कहते हैं क्योंकि हमारे सारे हृदय के मैल को भगवान धो देता है। इसलिए हमारी आपसे ही हाथ जोड़कर विनती है, कल हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार के कारण बताएंगे और कैसे अवतार लिया, ये अपन दो दिन में इस रहस्य को समझेंगे। ये रहस्य हमने समझ लिया तो भगवत गीता की कल इस श्लोक किसी कथा को शुरू करेंगे। आज श्लोक को पढ़ लीजिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति माम एति सो अर्जुन। तो यहाँ तक चौथे अध्याय भगवद गीता के श्लोकों के ऊपर कल चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल में प्रसाद का समय हो रहा है तो आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल आपके कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो कागज के ऊपर लिख के हमको दे सकते हैं और उनके भी शंकाओं का समाधान करेंगे। कल 8 बजे से पौने 8 बजे, 8 बजे आप लोग 8 बजे तक आते नहीं है, मैं आज देखा था अभी बहुत आ गए हो। तो कल जो भी